एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय में गोता लगा रहे हैं जो हम सबके जीवन से जुड़ा है, समाज, और इसे समझने के लिए हमारे साथ हैं एक बेहतरीन गाइड।
नमस्कार, आज हम बात करेंगे स्टीव ब्रूस की किताब सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र पर। ये किताब उन लोगों के लिए एक शानदार शुरुआत है जो समझना चाहते हैं कि समाज आखिर चलता कैसे है।
हाँ, समाज सुनने में भारी लगता है कभी कभी।
हाँ, पर यह सिर्फ अकादमिक बात नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को समझने का एक प्रैक्टिकल टूल भी है, आप कह सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा। और आजकल तो दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, मतलब नई टेक्नोलॉजी, ग्लोबल घटनाएं, हमारी जीवन शैली भी बदल रही है। ऐसे में ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि ये बदलाव हमें और हमारे समाज को कैसे प्रभावित कर रहे हैं।
बिल्कुल।
कई बार हमें लगता है कि जो मुश्किलें हम झेल रहे हैं वो सिर्फ हमारी अपनी है, लेकिन शायद वो एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हों।
हाँ, और यहीं पर समाजशास्त्र हमारी मदद करता है। ये हमें वो जो सी राइट मिल्स ने कहा था, समाजशास्त्रीय कल्पना यानी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, वो विकसित करने में मदद करता है।
समाजशास्त्रीय कल्पना।
हाँ, मतलब अपनी निजी जिंदगी की घटनाओं को बड़े सामाजिक रुझानों और ऐतिहासिक बदलावों से जोड़कर देखने की क्षमता। ये किताब इसी नजरिए को विकसित करने का एक जरिया है।
तो इस नजरिए को देने वाले लेखक स्टीव ब्रूस, इनके बारे में कुछ बताइए। कौन है ये और समाजशास्त्र में इनका क्या खास योगदान है?
स्टीव ब्रूस एक जाने माने ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। वो स्कॉटलैंड की एबरडीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस रहे हैं और उनका अकादमिक करियर 4 दशकों से भी ज्यादा लंबा रहा है। मतलब उनके पास अनुभव का खजाना है, आप समझिए।
4 दशक, वाह। तो क्या बात उन्हें खास बनाती है? उनका फोकस किन चीजों पर रहा है?
वैसे तो उनकी मुख्य विशेषज्ञता धर्म, राजनीति और सामाजिक बदलाव जैसे काफी गंभीर विषयों पर रही है, और उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और कट्टरपंथ जैसे मुद्दों पर काफी अहम काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस किताब के लिहाज से जो बात उन्हें खास बनाती है वो है उनका हुनर। वो समाजशास्त्र के जटिल, भारी भरकम लगने वाले विचारों और सिद्धांतों को बहुत ही सरल, आम बोलचाल की भाषा में समझाने की काबिलियत रखते हैं,
अच्छा।
और वो भी बिना विषय की गहराई कम किए। वो मुश्किल चीजों को आसान बना देते हैं एक तरह से।
ये तो कमाल की बात है, मतलब भारी भरकम थ्योरी को भी आसानी से समझा देते हैं।
बिल्कुल, अपने लंबे टीचिंग अनुभव और खासकर ब्रिटिश और अमेरिकी समाजों के तुलनात्मक अध्ययन से मिले ठोस उदाहरणों का इस्तेमाल करके वो समाजशास्त्र को एकदम जीवंत बना देते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कोई सूखी थ्योरी पढ़ रहे हैं।
हाँ, ये जरूरी है।
उनका नजरिया बहुत साफ, ईमानदार, और कभी कभी हमें अपनी बनी बनाई धारणाओं पर सवाल उठाने को मजबूर करने वाला भी होता है। वो सिर्फ क्या नहीं बताते, बल्कि दिखाते हैं कि ये सिद्धांत असल दुनिया में, हमारी जिंदगी में कैसे काम करते हैं।
चलिए अब किताब पर आते हैं, सोशियोलॉजी। इसका असल मकसद क्या है? ब्रूस इस किताब के जरिए पाठकों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं?
देखिए, इस किताब का मुख्य उद्देश्य समाजशास्त्र को सिर्फ यूनिवर्सिटी के क्लासरूम या मोटी किताबों से बाहर निकालकर आम लोगों के लिए सुलभ बनाना है। ब्रूस ये दिखाना चाहते हैं कि समाजशास्त्र के कॉन्सेप्ट्स कोई हवा हवाई बातें नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन और आज के बड़े सामाजिक मुद्दों, चाहे वो गरीबी हो, भेदभाव हो, पहचान का संकट हो या राजनीतिक बहसबाजी,
हाँ, जो हम रोज देखते सुनते हैं,
बिल्कुल, उनको समझने के लिए कितने जरूरी हैं। उनका लक्ष्य है एक तरह की समाजशास्त्रीय चेतना जगाना।
समाजशास्त्रीय चेतना, इसका क्या मतलब हुआ, जरा और समझाएंगी?
इसका मतलब है अपनी निजी जिंदगी में, अपने आसपास की घटनाओं में उन बड़ी सामाजिक शक्तियों को पहचानने की क्षमता विकसित करना।
अच्छा,
ये समझना कि हमारी पसंद, हमारे फैसले, हमारी मुश्किलें सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि समाज के बड़े ढांचे और प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। तो ये किताब सिर्फ अकादमिक ज्ञान नहीं देती, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया चश्मा देती है, एक नया नजरिया। ये हमें उन सवालों से रूबरू कराती है जो हम शायद रोज नहीं पूछते, कि भाई समाज कैसे काम करता है, इसमें ऊंच नीच क्यों है, संस्कृति हमें कैसे बनाती है और बदलाव कैसे आता है।
तो ये किताब हमें हमारी अपनी जिंदगी और समाज के बीच के कनेक्शन को समझने में मदद करती है, ये कौन कौन से बड़े आइडियाज पर फोकस करती है?
हाँ, ये कई जरूरी आइडियाज को छूती है, जैसे समाज में अलग अलग समूहों के बीच ऊंच नीच या असमानता क्यों और कैसे पैदा होती है।
हाँ, ये तो बड़ा सवाल है।
संस्थाएं क्या भूमिका निभाती हैं, सत्ता और राजनीति का खेल कैसे चलता है, और सबसे जरूरी, समाज बदलता कैसे है। ब्रूस इन सब पर बात करते हैं और दिखाते हैं कि यह सब हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है।
तो चलिए इन बड़े आइडियाज में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसी समाज शास्त्रीय कल्पना की जिसका आपने जिक्र किया।
ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में ये हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदलता है?
ये हमारी सोच को बिल्कुल पलट देता है। देखिए, हम अक्सर अपनी दिक्कतों को बहुत निजी मानते हैं। जैसे अगर किसी की नौकरी चली गई तो उसे लगेगा ये मेरी नाकामी है।
हाँ, अक्सर यही होता है। या अगर किसी खास इलाके में बेरोजगारी ज्यादा है तो हम सोच सकते हैं कि वहां के लोग शायद मेहनती नहीं। समाजशास्त्रीय कल्पना हमें इससे आगे देखने को कहती है। ये कहती है कि देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्तिगत समस्या असल में किसी बड़े आर्थिक बदलाव, सरकारी नीति या सामाजिक पैटर्न का नतीजा है। जैसे भारत में शादी के लिए साथी चुनना बहुत निजी फैसला लगता है, है ना?
हाँ, लगता तो है।
पर समाजशास्त्रीय नजरिए से देखें तो इसमें जाति, वर्ग, धर्म, परिवार की पृष्ठभूमि जैसी कितनी सामाजिक चीजें शामिल होती हैं।
बात तो सही है।
तो ये नजरिया हमें निजी परेशानियों को सामाजिक मुद्दों से जोड़ने में मदद करता है।
अच्छा,
तो मतलब ये हमें चीजों के लिए दूसरों को या खुद को दोष देने के बजाय बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। ये तो काफी राहत देने वाली बात भी हो सकती है।
हाँ बिल्कुल, लेकिन यहीं पर एक और सवाल उठता है। अगर सब कुछ समाज की बनावट या स्ट्रक्चर से तय होता है तो फिर हमारी अपनी मर्जी, हमारी कोशिशों, एजेंसी की क्या जगह है? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं?
ये समाजशास्त्र का एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल है, संरचना बनाम एजेंसी, स्ट्रक्चर वर्सेस एजेंसी का द्वंद्व। ब्रूस कैंटवीर इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, सामाजिक संरचनाएं जैसे कानून, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक नियम, संस्थाएं हमारी जिंदगी को बहुत हद तक आकार देती हैं। हमारे रास्ते तय करती हैं, हमें सीमित करती हैं, ये सच है। लेकिन हम सिर्फ निष्क्रिय पुर्जे नहीं हैं। हमारे पास सोचने, समझने, चीजों का मतलब निकालने और काम करने की क्षमता है। यही एजेंसी है।
अच्छा,
हम अकेले या मिलकर इन संरचनाओं को चुनौती दे सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं या कम से कम उनके साथ मोल भाव कर सकते हैं।
कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ?
हाँ, जैसे शिक्षा व्यवस्था को लीजिए। ये एक संरचना है जो तय करती है कि किसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, किसको नहीं। ये असमानता पैदा कर सकती है।
बिल्कुल।
लेकिन छात्र, शिक्षक, अभिभावक मिलकर बेहतर शिक्षा के लिए आवाज उठा सकते हैं, नीतियों में बदलाव की मांग कर सकते हैं या वैकल्पिक तरीके खोज सकते हैं। ये एजेंसी का उदाहरण है।
समझ गया।
ब्रूस भाषा का भी उदाहरण देते हैं। हमें व्याकरण के नियम मानने पड़ते हैं ताकि लोग हमें समझें, पर हम लगातार नए शब्द बनाते हैं, बोलने के नए तरीके ईजाद करते हैं, एजेंसी, जिससे भाषा बदलती रहती है।
हाँ, भाषा तो बदलती रहती है।
तो ये एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है संरचना और एजेंसी के बीच।
ये वाकई दिलचस्प है कि हम बंधे भी हैं और आजाद भी। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है जिसके बारे में आपने बताया, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या मतलब है इसका कि रियलिटी भी बनाई जाती है?
हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला विचार है। इसका मतलब है कि समाज में बहुत सी चीजें जिन्हें हम एकदम नेचुरल, सामान्य या हमेशा से ऐसा ही मान लेते हैं, वो असल में समाज ने समय के साथ गढ़ी हैं। वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ना ही प्रकृति का नियम।
जैसे?
जैसे भारत में लिंग भूमिकाएं कि लड़के क्या करेंगे, लड़कियां क्या करेंगी, कौन से काम मर्दों के हैं, कौन से औरतों के।
हाँ, ये तो है।
या फिर ये धारणा कि कुछ खास तरह की नौकरियां ज्यादा इज्जतदार होती हैं। ये सब चीजें समाज ने बनाई हैं, हमें सिखाई हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम सच या सामान्य मानते हैं वो किसी और समाज में या किसी और जमाने में बिल्कुल अलग हो सकता है।
बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर ये चीजें समाज ने बनाई हैं तो इन्हें बदला भी जा सकता है।
अच्छा,
ये समझ हमें दुनिया को जस का तस स्वीकार करने के बजाय उस पर सवाल उठाने की ताकत देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिन रिवाजों या मान्यताओं को ढो रहे हैं वो कितनी जायज है और कितनी सिर्फ आदत।
ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और जब हम समाज की बनाई इन चीजों पर सवाल उठाते हैं तो अक्सर हम असमानता के मुद्दे पर पहुंच जाते हैं। ब्रूस असमानता और सामाजिक संस्थाओं के बारे में क्या कहते हैं, ये संस्थाएं कैसे काम करती हैं?
ब्रूस इस पर काफी जोर देते हैं। वो दिखाते हैं कि समाज में असमानता, चाहे वो पैसे की हो, जाति की, लिंग की या धर्म की, कैसे पैदा होती है और कैसे बनी रहती है। और इसमें सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे परिवार, स्कूल, कानून, धर्म, मीडिया का बड़ा रोल होता है। ये संस्थाएं जरूरी काम तो करती हैं, जैसे परिवार हमें सहारा देता है, स्कूल हमें सिखाता है, लेकिन अनजाने में ये मौजूदा असमानताओं को बनाए रखने या बढ़ाने का काम भी कर सकती हैं।
जैसे भारत में देखें तो जाति व्यवस्था या फिर लड़कों और लड़कियों को मिलने वाले मौकों में फर्क, ये सब इसी का उदाहरण है।
हाँ बिल्कुल, स्कूल शायद सबको एक जैसा पढ़ाने का दावा करे, पर क्या असल में गरीब और अमीर बच्चे को या लड़के और लड़की को एक जैसे मौके मिलते हैं?
मुश्किल है।
परिवार प्यार तो देता है, पर कई बार वही पारंपरिक सोच को आगे बढ़ाता है।
ब्रूस कहते हैं कि इन संस्थाओं के काम करने के तरीके को समझना जरूरी है, ये जानने के लिए कि असमानता इतनी मजबूती से जमी क्यों रहती है।
हाँ, ये समझना जरूरी है।
और ये समझ ही सामाजिक न्याय की लड़ाई का पहला कदम है। जब हम ये समझ जाते हैं कि समस्या की जड़ें कहाँ हैं, तभी हम सही समाधान खोज सकते हैं।
तो कुल मिलाकर ये किताब हमें दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना सिखाती है, अपनी निजी जिंदगी को समाज से जोड़ना, स्ट्रक्चर और अपनी क्षमता के बीच का संतुलन समझना, ये जानना कि बहुत कुछ जो नेचुरल लगता है वो असल में बनाया गया है, और असमानता की जड़ों को पहचानना, ये तो काफी कुछ है। हाँ, ये समाज शास्त्र का सार है, आप कह सकते हैं। ये हमें एक ज्यादा जागरूक और आलोचनात्मक विचारक बनाता है। यह हमें दिखाता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी ऊपर से दिखती है, उसके नीचे कई परतें हैं।
ब्रूस की किताब से कुछ ऐसी बातें या विचार जो आपको खास तौर पर याद रह गए हों, कोई ऐसी पंक्ति जो सोचने पर मजबूर कर दे?
हाँ कई हैं। एक तो वही समाजशास्त्री कल्पना वाली बात, इतिहास और जीवनी, सार्वजनिक मुद्दों और निजी परेशानियों के बीच संबंध समझना। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी छोटी सी जिंदगी भी एक बड़े ऐतिहासिक नाटक का हिस्सा है।
ये कह रहा है।
एक और विचार जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है वो है, समाज केवल व्यक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि संबंधों और संस्थाओं की एक प्रणाली है जो हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को गहराई से आकार देती है। यह हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक दूसरे से और समाज से गहरे जुड़े हुए हैं।
मुझे भी वो बात बहुत दमदार लगी कि असमानता कोई प्राकृतिक या अटल तथ्य नहीं है, बल्कि एक सामाजिक रचना है जिसे समझ और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से बदला जा सकता है। ये एक तरह की उम्मीद जगाती है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। ये निराशावाद को चुनौती देती है।
बिल्कुल। और एक और बात, संस्कृति उस लेंस की तरह है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। ये तय नहीं करती कि हम क्या देखते हैं, पर यह प्रभावित करती है कि हम उसकी व्याख्या कैसे करते हैं।
हाँ,
ये हमें अपनी मान्यताओं के प्रति थोड़ा विनम्र और दूसरों की संस्कृतियों के प्रति थोड़ा ज्यादा खुला बनाता है।
तो इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल है? हम इस समाजशास्त्रीय सोच को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं, मतलब आम इंसान कैसे इस्तेमाल करे इसे?
कई तरीकों से। सबसे पहले तो अपने निजी रिश्तों में, जब हम समझते हैं कि अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों की सोच, उनके मूल्य अलग क्यों हो सकते हैं, तो हम ज्यादा सहानुभूति रख पाते हैं, बेहतर संवाद कर पाते हैं।
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है।
झगड़े कम होते हैं, समझ बढ़ती है। दूसरा, काम की जगह पर ये समझने में मदद मिलती है कि ऑफिस पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, कौन आगे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, और वहां मौजूद असमानताओं जैसे लिंग या पृष्ठभूमि के आधार पर को कैसे पहचाने और उनसे कैसे निपटे।
अच्छा, करियर में भी मदद मिलती है।
हाँ,
और समाज के स्तर पर एक नागरिक के तौर पर।
हाँ, एक जागरूक नागरिक बनने में ये बहुत मदद करता है। जब हम समाचार पढ़ते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं तो हम ज्यादा आलोचनात्मक तरीके से सोच पाते हैं।
मीडिया लिटरेसी जिसे कहते हैं।
बिल्कुल, हम समझ पाते हैं कि खबरों को कैसे पेश किया जा रहा है, उसके पीछे क्या एजेंडा हो सकता है। ये हमें सिर्फ सतही जानकारी पर यकीन करने से बचाता है। साथ ही अगर हम समाज में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो ये समझना कि सत्ता कैसे काम करती है और सामाजिक आंदोलन क्यों सफल या असफल होते हैं हमें ज्यादा प्रभावी बनाता है।
तो ये सोच हमें बेहतर इंसान, बेहतर प्रोफेशनल और बेहतर नागरिक बनने में मदद कर सकती है।
बिल्कुल, ये हमें अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा गहराई से समझने और उसमें अपनी भूमिका को ज्यादा जिम्मेदारी से निभाने में मदद करती है।
इस पूरी चर्चा के बाद आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही स्टीव ब्रूस की इस किताब से?
मेरे लिए सबसे अहम बात ये रही कि समाजशास्त्रीय नजरिया अपनाना सिर्फ अकादमिक कसरत नहीं है, ये वाकई दुनिया देखने का तरीका बदल देता है। जब हम अपनी निजी दिक्कतों को बड़ी सामाजिक ताकतों से जोड़कर देखते हैं तो वो कम डरावनी और ज्यादा समझने लायक लगने लगती हैं।
हाँ।
और सामाजिक समस्याएं जिन्हें हम अक्सर बहुत बड़ा और जटिल मानकर छोड़ देते हैं वो ज्यादा सुलझने लायक लगने लगती हैं।
यह हमें सशक्त बनाता है एक तरह से। और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा असरदार रही वो ये समझना कि कैसे हमारी बहुत सी व्यक्तिगत लगने वाली चीजें असल में समाज की देन है। ये एहसास कि जिसे हम अपनी मर्जी या अपना फैसला समझते हैं उस पर भी समाज का कितना गहरा असर होता है, ये हमें थोड़ा विनम्र बनाता है और शायद दूसरों को समझने में ज्यादा मददगार भी। ये हमें रटी रटाई सोच से बाहर निकलने को उकसाता है।
हाँ, और ये भी कि समाज बदलता है लेकिन धीरे धीरे, इसमें स्थिरता भी है और बदलाव की संभावना भी, ये दोनों बातें एक साथ समझना जरूरी है। ब्रूस की किताब हमें यही संतुलित नजरिया देती है।
तो स्टीव ब्रूस की ये किताब सोशियोलॉजी वाकई हमें सोचने के लिए बहुत कुछ देती है। ये दिखाती है कि समाज को समझना न सिर्फ ज्ञानवर्धक है बल्कि हमारी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। ये सब जानने के बाद सोचने वाली बात यह है कि हम रोजमर्रा की जिन सच्चाइयों को मानकर चलते हैं उनमें से कितनी हमारी अपनी है और कितनी समाज की दी हुई, इस पर जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।